नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पद्भागवतम चौथा स्कंद सातवां अध्याय दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति श्लोक संख्या 33। पत्न्यः ऊचुः यज्ञः अयम् तव यजनाय केन सृष्टः विध्वस्तः पशुपतिना अद्य दक्षकोपात् तं नः त्वं शवशयन आभ शांतमेधं यज्ञ आत्मन नलिना रुचा दृशा पुनीहि। पत्न्य ऊचुः यज्ञोऽयं तव यजनाय केन सृष्टा विध्वस्तः पशुपते नाद्य दक्षकोपात् तं नस्त्वं शय शयनाभशान्तमेधम् यज्ञात्मनलिना रुचा दृशा पुनिः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। याज्ञिकों की पत्नियों ने कहा, हे भगवान, वह यज्ञ ब्रह्मा के आदेशानुसार व्यवस्थित किया गया था, किंतु दुर्भाग्यवश दक्ष से क्रुद्ध होकर शिव ने समस्त दृश्य को ध्वस्त कर दिया और उनके रोष के कारण यज्ञ के निमित्त लाए गए पशु निर्जीव पड़े हैं। अतः यज्ञ की सारी तैयारियां बेकार हो चुकी हैं। अब आपके कमल जैसे नेत्रों के चितवन से इस यज्ञ स्थल की पवित्रता पुनः प्राप्त हो। तात्पर्य, यज्ञ में पशुओं की बलि उन्हें जीवन प्रदान करने के लिए की जाती थी। वहां पर पशुओं के लिए पशुओं को लाए जाने का यही प्रयोजन था। यज्ञ में पशु की बलि और इसे नवजीवन प्रदान करना मंत्रोच्चार शक्ति के प्रमाण थे। दुर्भाग्यवश जब शिव ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया तो कुछ पशु भी मार डाले गए। एक का वध दक्ष के सिर लगाने के लिए हुआ था। उनके शरीर बिखरे थे और यज्ञ स्थल श्मशान भूमि बन गया था। फलतः यज्ञ का वास्तविक उद्देश्य समाप्त हो चुका था। क्योंकि भगवान विष्णु को ही लक्ष्य बनाकर ऐसे यज्ञ किए जाते हैं, अतः याज्ञिकों की पत्नियों ने विष्णु से प्रार्थना की कि वह अहेतु की कृपा द्वारा यज्ञ स्थल पर कम से कम एक दृष्टि तो डाल दें, जिससे यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा सके। सारांश यह है कि वृथा ही पशुवध न किया जाए। वे मंत्र शक्ति के परीक्षण हेतु प्रयुक्त होते थे और उन्हें मंत्र के बल पर पुनः तरुण हो जाना था। उनका वध नहीं होना चाहिए, जैसा कि शिव ने दक्ष के सिर के स्थान पर पशु सिर लगाने के लिए प्रयोग किया था। पशु की बलि होते और उसके पुनः तरुण होते देखना एक मनोहरी दृश्य होता, किंतु अब वैसा वातावरण नहीं रह गया था। अतः याज्ञिकों की पत्नियों ने विष्णु से प्रार्थना की कि वे अपनी कृपा दृष्टि से पशुओं को जिलाएं और यज्ञ को मनमोहक बनाएं। अनुवाद को दोहराइएगा। याज्ञिकों की पत्नियों ने कहा, हे भगवान, वह यज्ञ ब्रह्मा के आदेशानुसार व्यवस्थित किया गया था, किंतु दुर्भाग्यवश दक्ष से क्रुद्ध होकर शिव ने समस्त दृश्य को ध्वस्त कर दिया और उनके रोष के कारण यज्ञ के निमित्त लाए गए पशु निर्जीव पड़े हैं। अतः यज्ञ की सारी तैयारियां बेकार हो चुकी हैं। अब आपके कमल जैसे नेत्रों की चितवन से इस यज्ञ स्थल की पवित्रता पुनः प्राप्त हो। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्ण याज्ञिकों के पत्नियां यहाँ पर भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार ये यज्ञ की व्यवस्था की गई थी, लेकिन शिवजी जब दक्ष के ऊपर क्रोधित हो गए तो सब कुछ ध्वंस हो गया, सब कुछ बेकार हो चुका है। इसलिए आपकी कृपा दृष्टि इस यज्ञ स्थली पर रहे ताकि यज्ञ पुनः प्रारंभ हो सके। तो हम देखते हैं कि वैदिक शास्त्रों में पशु को यज्ञ में बलि चढ़ाना ये एक प्रामाणिक प्रथा थी, और इस प्रथा के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था। वास्तव में यज्ञ करना एक बहुत कठिन बात था, अभी भी है, और ऐसे यज्ञ के समय बहुत सारे विधि विधानों का पालन करना पड़ता था और बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता था। अगर किसी भी विधि विधान में थोड़ी भी गलती हो गई, थोड़ा भी दोष अगर उसमें आ गया, या तो फिर मंत्र सही तरह से नहीं बोले गए, उनका उच्चारण सही ढंग से नहीं किया गया, तो इस दोष की वजह से सारा यज्ञ निष्फल रह जाता। इसलिए जब भी यज्ञ किए जाते थे, बड़े बड़े यज्ञ, और त्रेता युग में तो ऐसे यज्ञ किए जाते थे जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि पूरा शहर बना जाता था केवल एक यज्ञ करने के लिए, जैसे राजा दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ करते समय किया, या पुत्र काम यज्ञ करते समय किया। बेलगाम जैसे भी बड़ा इतना एक शहर बन गया केवल एक यज्ञ करने के लिए। तो इतने सारे तैयारियां करनी पड़ती थी, और इतने सारे ब्राह्मण पुरोहित हुआ करते थे, और अलग अलग ब्राह्मणों के लिए अलग अलग कार्य सौंपे जाते थे। इनमें से प्रमुख चार पुरोहित हुआ करते थे, जिनके नाम थे होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। ये ब्रह्मा जो हैं, ये प्रमुख पुजारी हुआ करते थे। ब्रह्मा मतलब चतुर्मुख ब्रह्मा नहीं। और ये सारे कार्य अलग अलग कार्य करते थे, और फिर ऐसे भी ब्राह्मण हुआ करते थे जो केवल ये देखते थे कि मंत्रों का उच्चारण सही ढंग से हुआ है कि नहीं, क्योंकि अगर कोई उच्चारण में भी गलती हो जाए या कोई मंत्र बीच में छूट जाए तो फिर इस दोष की वजह से बहुत गड़बड़ हो जाता था, सारे यज्ञ में। लेकिन अगर यज्ञ सही ढंग से हो गया, आहुतियां सही ढंग से अर्पण की गई और अगर मंत्रों का उच्चारण सही हुआ, ब्राह्मण भी प्रामाणिक रहे और सारे विधि विधानों का पालन सही ढंग से हुआ, तो फिर सारे देवी देवता और स्वयं विष्णु आके वहां यज्ञ का फल स्वीकार करते और यज्ञ का उद्देश्य पूरा हो जाता। और ऐसे समय में पशु की हत्या की जाती थी, हत्या मतलब बलि चढ़ाई जाती थी। क्यों? यहां प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं, क्योंकि वो यज्ञ का प्रमाण सिद्ध करने के लिए कि यज्ञ प्रमाणिक तरह से किया जा चुका है कि नहीं। अगर यज्ञ बिल्कुल प्रमाणिक ढंग से परिपूर्णता से अगर संपन्न किया जाता था तो जिस पशु की बलि चढ़ाई जाती थी उस पशु को तुरंत उनकी आंखों के सामने एक नया शरीर मिलता था, तरुण शरीर मिलता था और इससे सबको मन बहुत अच्छा लगता था, आनंद लगता था ये देखकर। और इससे ये सिद्ध हो जाता था कि यज्ञ सही ढंग से किया जा चुका है। तो यज्ञ की परीक्षा करनी थी तो बलि चढ़ाकर करते थे, पशु की बलि। और अगर पशु को नया शरीर मिल गया तुरंत उनकी आंखों के सामने एक तरुण शरीर, तब सभी लोग समझ सकते थे कि यज्ञ सफल हो चुका है और फिर सारे देवी देवता और स्वयं विष्णु आकर यज्ञ का फल स्वीकार करते थे। लेकिन अगर कोई दोष हुआ तो दो प्रकार की चीजें हो सकती थी, या तो यज्ञ निष्फल रहता था, देवी देवता नहीं आते, भगवान नहीं आते फल स्वीकार करने के लिए और जिस उद्देश्य से यज्ञ किया जाता था वो उद्देश्य पूर्ण नहीं होता, या तो फिर बिल्कुल उल्टा ही या विपरीत परिणाम हो जाता था, कोई उल्टा ही फल प्राप्त हो जाता था जिसे प्राप्त करने के लिए यजमान की कोई इच्छा नहीं थी। तो ऐसे कई घटनाएं हैं शास्त्र में बताए जाते हैं। सफल यज्ञ भी कई हम देखते हैं, पढ़ते हैं, जैसे अश्वमेध यज्ञ राजा दशरथ ने किए और युधिष्ठिर महाराज ने कितने सारे किए और पृथु महाराज ने 99 ऐसे यज्ञ किए अश्वमेध यज्ञ। और 100वें यज्ञ करते समय, उसकी शुरुआत करते समय किसी को मालूम है क्या हुआ? इंद्र ने घोड़ा यज्ञ का जो घोड़ा है अश्व वो चुरा लिया, क्योंकि केवल इंद्र ने 100 यज्ञ किए थे अश्वमेध यज्ञ और पृथु महाराज 99 तक पहुंच गए और एक और कर देते तो इंद्र के बराबर हो जाते, तो इंद्र घबरा गए कि हो सकता है कि मेरे पद की प्राप्ति हो जाए, किस्सा कुर्सी का वही हो गया। तो इंद्र ने एक संन्यास चुपके से आके घोड़ा चुरा लिया और सन्यासी के वेश में आए और जब इंद्र पृथु महाराज के पुत्र ने देखा कि घोड़ा नहीं है और कोई घोड़ा चुरा कर ले जा रहा है आकाश में, तो तेजी से घोड़े के पीछा करने लगे। लेकिन उस समय जब देखा कि सन्यासी के कपड़े में कोई है तो फिर वैसे के वैसे चले आए। तो पृथु महाराज ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर से यज्ञ किया, फिर से इंद्र ने आके सन्यासी के वेश में ऐसे घोड़ा चोरी कर दिया। इस बार फिर पृथु महाराज के पुत्र पीछा करने लगे और फिर से उन्होंने पीछा करना छोड़ दिया क्योंकि सन्यासी के कपड़े थे। तो इस प्रकार से पृथु महाराज को फिर अंत में बहुत क्रोध आया इंद्र के ऊपर और इतना क्रोध आया कि बस उनको खत्म ही करने वाले थे कि उस समय फिर ब्रह्मा जी वगैरह सब आए, उनको शांत किया कि देखो ये सब ठीक नहीं है, आप दोनों वैष्णव हैं और आप दोनों के बीच में इतना द्वेष और ईर्ष्या और ये टक्कर ये ठीक नहीं है, आप अपनी जगह में महान हैं, वो उनकी जगह में महान है। तो फिर इंद्र आए, बड़े उनको लज्जा हुई, शर्मिंदा हुए और आकर पृथु महाराज के पांव छुए और ये नम्रता को देखकर पृथु महाराज भी बड़े उनका भी हृदय पिघल गया और दोनों ने आलिंगन कर लिया और फिर सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तो पृथु महाराज ने सोचा कि ठीक है, इंद्र ने 100 यज्ञ किए हैं, अपने पद से इतने आ सकते हैं तो रहना दो उनको, एक यज्ञ ज्यादा उनको मिल गया उन्होंने 100 यज्ञ किए हैं, ये नाम हो गया, और मैंने 99 किए हैं, 100 तक नहीं पहुंच गया, ठीक है कोई बात नहीं। तो वैष्णव ऐसे उदार होते हैं, कोई बात नहीं, दूसरे को यश मिलना है मिलने दो, हमें यश वश से क्या लेना देना है। तो इसी प्रकार से पृथु महाराज ने भी सोचा, ठीक है अगर इंद्र को 100 अश्वमेध यज्ञ करने का यश चाहिए, ठीक है मिलने दो, अभी एक यज्ञ के लिए भी मैं बच गया रह गया, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से सफल यज्ञ 99 कर चुके थे। तो ऐसे शास्त्र में भी कितने सारे उदाहरण हैं कि सफल यज्ञ हुए हैं और उनके सामने फल मिल जाता था, पशु तरुण अवस्था में आ जाता था, देवी देवता भी आ जाते थे। लेकिन असफल यज्ञ, निष्फल यज्ञ के बारे में भी श्रीमद् भागवत में दृष्टांत है। जैसे ध्रुव महाराज के वंश में आगे चल के महाराज अंग नाम के एक राजा हुए। किनके पिता थे महाराज अंग, वो जानते हैं? महाराज वेण के। वेण कौन थे? बड़े दुष्ट राजा थे, और वेण को, वेण इतने अत्याचार करते थे, इतने क्रूर व्यक्ति थे कि बचपन में जब वो थे तो बच्चों को उठाकर वो नदी में फेंक देते थे, ऐसे मजा के लिए, उनको मजा आता था, और ऐसे हजारों बच्चों को मार डालते थे। जब प्रजा में ऐसे उत्पात हो गया कि ये क्या हो रहा है, राजा के पास गए, राजा बड़े हैरान हो गए महाराज अंग। तो महाराज अंग ने सब ये सोचा कि ऐसा पुत्र मिला मेरा दुर्भाग्य है, तो अपना राज छोड़कर वो वन में चले गए, क्योंकि इसको सहन नहीं कर पाए। और जाते जाते भगवान को वो धन्यवाद देने लगे कि आप ऐसा जो पुत्र मिला वास्तव में आपकी कृपा है, क्योंकि संसार से निराशक्ति हो गई, अच्छा पुत्र मिलता तो आसक्त हो जाते, लेकिन ऐसा पुत्र मिला है कि निराशक्त होना ही है, तो हैरान होकर उदास होकर मैं सब छोड़ के जा रहा हूं, ये अच्छी बात है। तो खैर, और फिर महाराज वेण के शरीर से, उनके शरीर के मंथन से, जंघों के जो शरीर मंथन से निषाद जो कुल है वो पैदा हो गया। निषाद यानी जो बिल्कुल नीच योनि के होते हैं। तो महाराज वेण के शरीर में जो भी पाप था वो पाप उस निषाद योनि में आ गया, और फिर उनके भुजाओं की का मंथन करने से फिर पृथु महाराज आए, और उनके साथ में अर्ची जो उनकी पत्नी है। अर्ची लक्ष्मी देवी के अवतार हैं और पृथु महाराज कृष्ण के अवतार हैं, सत्यावेश अवतार माने जाते हैं पृथु महाराज। तो इस प्रकार से वेण जैसे दुष्ट व्यक्ति के शरीर से ब्राह्मणों ने मंथन करके पृथु महाराज को, जो कि सत्यावेश अवतार हैं, उनको उत्पन्न किया। लेकिन ये तब हो पाया जब वेण के सारे पाप निषाद के रूप में निकल चुके थे। निषादों का वर्णन कहीं आपने पढ़ा है, सुना है? हाँ? राम के समय कौन थे निषादों के प्रमुख? रामायण याद कीजिए, गुह, उन्होंने क्या किया था, कब मदद की रामचंद्र जी के? हाँ, नदी पार करा दी उनको। जब प्रभु रामचंद्र को वनवास में गए और चित्रकूट की ओर जा रहे थे अयोध्या से, तो गुह ने उनकी बहुत मदद की अपने सारे निषाद लोगों से, और उन्होंने उनको नदी पार कराया, अच्छी तरह से उनका देखभाल किया, उनकी सेवा की, जलपान कराया। तो इस प्रकार से उस समय के निषाद भी उनकी ऐसी भावना थी। आजकल के जो भी नीच होते हैं संसार में, वो भगवान के लिए कोई परवाह नहीं करते, लेकिन त्रेता युग में निषाद जो योनि थी वो लोग भी भगवान के सेवक हुआ करते थे। तो वेण के सारे पाप जो हैं वो पैरों से अपने जंगों से निकल गए, और फिर जो बाकी रहा उसमें से उसका मंथन करके पृथु महाराज आए। तो यही पृथु महाराज के पिता हुए वेण, वेण के पिता हुए महाराज अंग। तो जब महाराज अंग के कोई पुत्र नहीं हुआ था और वो अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे, तो अश्वमेध यज्ञ किया, लेकिन देवी देवता फल लेने के लिए आए नहीं, और जब आए नहीं तो महाराज अंग बड़े उदास हो गए कि क्या कारण हो सकता है। ब्राह्मणों से सलाह मशवरा किया कि क्या है कारण कि देवी देवता नहीं उपस्थित हो रहे हमारे सामने यज्ञ का फल लेने के लिए। तो उस समय ब्राह्मणों ने अपने आप में भी बातचीत की और राजा के पास आए। हम सारे ब्राह्मण तो प्रामाणिक हैं, हमारे निजी जीवन में हम पवित्र हैं, हमारे ब्राह्मण के जो कर्तव्य होते हैं वो सही तरह से निभा रहे हैं, हमारे जीवन में विधि विधानों का पालन ठीक से कर रहे हैं, हमने यज्ञ में आहुतियां भी सही ढंग से डाली हैं, मंत्रों का उच्चारण भी बिल्कुल सही ढंग से हुआ है, कोई भी दोष नहीं है यज्ञ में, फिर भी हम समझ में नहीं पा रहे हैं कि देवी देवता क्यों नहीं आ रहे फल लेने के लिए। तो और सोचने के बाद ब्राह्मणों को पता चला, अपने शुद्धता के बल से वो दृष्टि उनको मिली और कहने लगे कि हे राजन, वास्तव में आप भी पुण्यवान हैं, इस जन्म में आपने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि पिछले जन्म में आपने कोई पाप किया था जिसकी वजह से आपको अभी इस जन्म में पुत्र की संतान नहीं प्राप्त हुए हैं, इसलिए आप पहले पुत्र काम यज्ञ कीजिए, उसके बाद में देवी देवता आएंगे, विष्णु आएंगे, तब आपका यज्ञ सफल हो जाएगा। तो फिर महाराज अंग ने ऐसे ही किया, पुत्र काम यज्ञ किया और फिर सारे देवी देवता आ गए, विष्णु आए और उनके जो प्रसाद से जब महाराज अंग ने अपने पत्नी को सुनीता नाम था उनका, जो वास्तव में मृत्यु मूर्तिमान मृत्यु के पुत्री थी, कन्या थी, उनको उन्होंने खिलाया वो पायस, और क्योंकि अयोग्य स्त्री को उन्होंने ये पायस खिलाया तो एक अयोग्य पुत्र हुआ जो वेण था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संतान की उत्पत्ति के लिए भी अलग अलग युगों में अलग अलग पद्धतियां होती थी। सत्ययुग में केवल मन से पति पत्नी से कहते थे मैं तुम्हें पुत्र प्रदान करना चाहता हूं, पुत्र हो जाता था, बस केवल विचार से मन के बल से। त्रेता युग में पुत्र की उत्पत्ति होती थी तो केवल पायस या जो यज्ञ के जब प्रसाद मिलता था वो पायस जब रानी या पत्नी खाती थी तो उनको पुत्र हो जाता था। लेकिन द्वापर युग से सब कुछ धीरे धीरे स्थूल होता गया और कलयुग में तो सबसे ज्यादा स्थूल है, इसलिए कलयुग में शारीरिक संबंध होना आवश्यक है पुत्र की उत्पत्ति के लिए, लेकिन सत्ययुग में त्रेता युग में ये आवश्यक नहीं था। तो देखिए पहले के युगों में कितने सूक्ष्म चीजें हुआ करती थी। तो इस प्रकार से पायस प्राप्त करने से महाराज अंग के पुत्र हुए, लेकिन देखिए पहले निष्फल हुआ था, क्यों? हालांकि सारे यज्ञ बिल्कुल सही ढंग से किया गया था, ब्राह्मण प्रामाणिक थे, मंत्रों का उच्चारण प्रामाणिक था, राजा भी प्रामाणिक थे, यजमान प्रामाणिक थे, लेकिन फिर भी यजमान के पिछले जन्म में कोई एक पाप था जिसकी वजह से उनको पुत्र नहीं मिला, इसलिए यज्ञ निष्फल रहा। तो देखिए कर्म कांड का पथ अगर आपको अपनाना है तो कांटों से भरा हुआ है ये रास्ता। इस जन्म में भी आपने कोई दोष नहीं किया है, फिर भी पिछले जन्म के दोष की वजह से इस जन्म के यज्ञ के ऊपर कितना असर पड़ता है, और ये एक प्रकार का दोष है। दूसरे प्रकार का दोष ये हो सकता है कि जब मंत्रों का उच्चारण यज्ञ में नहीं किया जाता तो परिणाम विपरीत हो जाता है, जो आप चाहते हैं उससे उल्टा परिणाम होता है। जैसे भागवत में कथा आती है विश्वरूप ब्राह्मण विश्वरूप की, एक बार जब बृहस्पति नहीं थे, क्रोधित हो गए थे इंद्र के ऊपर, तो कोई तो उनको पुरोहित चाहिए था देवताओं को, तो उन्होंने विश्वरूप नाम के ब्राह्मण को चुना जो कि त्वष्टा के पुत्र थे, उनके शायद 3 सर थे विश्वरूप के। तो विश्वरूप देवताओं के लिए सारे यज्ञ करते थे और इससे असुर को हरा सके देवतागण। लेकिन इंद्र को बाद में यह पता चला कि विश्वरूप छुप छुप के थोड़ा सा यज्ञ का प्रसाद जो है वो असुरों को भी दे रहे हैं। जब ये पता चला तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया और इंद्र ने अपने वज्र से विश्वरूप को मार डाला। जब त्वष्टा को ये पता चला कि ऐसे इंद्र ने किया है तो इंद्र से बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने सोचा, संकल्प किया कि मैं एक ऐसा यज्ञ करूंगा और एक ऐसे व्यक्ति को उत्पन्न करूंगा राक्षस को, इससे जो कि इंद्र का वध कर इंद्र को खत्म कर देगा। तो त्वष्टा ने एक ऐसे यज्ञ किया और उस यज्ञ में उन्होंने ये कहा कि एक ऐसे पुत्र की उत्पत्ति हो, एक ऐसे व्यक्ति की उत्पत्ति हो जो कि इंद्र का शत्रु होगा। लेकिन मंत्रों का उच्चारण थोड़ा गलत होने से उसका अर्थ यह हुआ कि एक ऐसे व्यक्ति की उत्पत्ति हो जिसका शत्रु इंद्र होगा, नहीं जिसके लिए इंद्र शत्रु होगा, जिसका शत्रु जो इंद्र का शत्रु होगा नहीं, जिसके लिए इंद्र शत्रु होगा, लेकिन वो इंद्र का शत्रु नहीं होगा, इंद्र उसके लिए शत्रु होगा। तो फिर किसका जन्म हुआ, कोई बता सकते हैं? छठे स्कंद में आता है भागवत का, वृत्रासुर, वृत्र नाम के असुर का जन्म हुआ। और ये वृत्रासुर ये कौन थे पिछले जन्म में, छठे स्कंद में? राजा चित्रकेतु। राजा चित्रकेतु की कथा किस संदर्भ में आती है भागवत में? दो प्रमुख घटनाएं हैं राजा चित्रकेतु के बारे में। एक है जब उनका पुत्र मर जाता है और अंगिरा मुनि उनको जीवित कर देते हैं, और फिर उनको पुत्र जो है वो उनको उपदेश करता है कि कौन है मेरा पिता, कौन है माता, कौन से जीवन के माता पिता, वो कथा आप जानते हैं। और वही राजा चित्रकेतु आगे चल के संकर्षण के शुद्ध भक्त बने। और क्या घटना है दी? पार्वती माता ने उनको श्राप दिया, क्योंकि शिवजी की गोद में बैठकर पार्वती माता बैठी थी और शिवजी उपदेश कर रहे थे, वेदों के ऊपर भाषण कर रहे थे। और उस समय चित्रकेतु महाराज वहां से जा रहे थे तो वो हंसने लगे। मन में कोई तिरस्कार की भावना नहीं थी, लेकिन यही सोच रहे थे कि शिव जी इतने महान हैं कि यही एकमात्र कर सकते हैं। लेकिन माता पार्वती ने इसे गलत समझा और श्राप दे दिया। शिव जी को बुरा नहीं लगा, समझते थे कि चित्रकेतु महाराज इतने बड़े भक्त हैं, लेकिन माता पार्वती ने श्राप दिया कि तुम्हें असुर की योनि में जन्म लेना होगा। और इस श्राप के अनुसार चित्रकेतु महाराज को वृत्रासुर के शरीर में के रूप में जन्म लेना पड़ा। और चित्रकेतु महाराज ने उस श्राप को बड़े नम्रता से स्वीकार किया, और क्योंकि वो भक्त थे लेकिन फिर भी असुर के शरीर में आ गए, इसलिए असुर के शरीर में आने के बाद भी भक्ति भूले नहीं। इसलिए यज्ञ स्थली पे इंद्र को उपदेश कर रहे थे कृष्ण के बारे में, और किस प्रकार से चिंतित नहीं होना चाहिए, समान बुद्धि होनी चाहिए, चित्त भगवान के ऊपर केंद्रित करके युद्ध करना चाहिए, अपना कर्तव्य करना चाहिए, प्रचार कर रहे थे इंद्र को। इंद्र देवता हैं, भगवान के भक्त हैं, सुर हैं, उनको असुर को प्रचार करना चाहिए था, लेकिन मामला उल्टा हो गया, असुर देवता को प्रचार करने लगे, और आखिर में इंद्र ने वध कर दिया वृत्रासुर का। वृत्रासुर चले गए गोलोक वृंदावन, वैकुंठ चले गए, गोलोक तो नहीं वैकुंठ तो चले गए, और इंद्र रह गए अपने नंदन कानन में। तो आखिर में जीत हुई वृत्रासुर की। तो इस प्रकार से वृत्रासुर का जन्म हुआ, और वृत्रासुर के इंद्र के हाथों से वृत्रासुर का वध हुआ। त्वष्टा का उद्देश्य क्या था कि वृत्रासुर के हाथों में इंद्र की मृत्यु होनी चाहिए, लेकिन उल्टा हो गया। क्यों? उन्होंने एक मंत्र का उच्चारण उल्टा कर दिया था, सही नहीं कहा था। एक छोटी मात्रा दीर्घ मात्रा कर दी तो उल्टा अर्थ हो जाता है ना? जैसे नियम अग्रह और नियम आग्रह, बिल्कुल उल्टे अर्थ हो जाते हैं। एक आ ई का फर्क पड़ जाता है मंत्र में या संस्कृत भाषा में, उल्टा ही अर्थ हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह कर्म कांड का जो पथ है, यज्ञ करने का पथ है, कितना कांटों से भरा हुआ है, कितने दोष इसमें आ सकते हैं। प्रामाणिक ब्राह्मण भी हो, मंत्रों के उच्चारण की बात दूर है, किसी पूर्व जन्म में पाप करने की वजह से भी ये यज्ञ निष्फल हो सकता है। तो इस प्रकार से ऐसे करना बड़ा कठिन है, सफलता प्राप्त करना ऐसे पथ में बड़ा कठिन है। और इसलिए जब दोष हो जाता है और पशु को तरुण शरीर नहीं मिल जाता है तो उस समय ये पाप हो जाता है, पशु हत्या के बराबर हो जाता है। यज्ञ में जब पशु को बलि चढ़ाते हैं और पशु को फिर से तरुण शरीर मिल जाता है तो वो हत्या नहीं कहलाता। लेकिन जब यज्ञ में कोई दोष आ जाता है और पशु पुनः जीवित नहीं होता तो वो पशु हत्या कहलाता है, वो खून होता है, पाप हो जाता है और पाप का फल भी वो यजमान को लेना पड़ता है। इसलिए राजा प्राचीन बहिष्यत नाम के राजा थे, चौथे स्कंद में इनका वर्णन आता है भागवत में। वो कर्म कांड में बड़े निपुण थे, बहुत सारा कर्म कांड किया करते थे और नारद मुनि उनके पास आए। नारद मुनि जब आए उनके पास में तो उपदेश करने लगे, उनको भक्ति मार्ग में लाने का प्रयास कर रहे थे और नारद मुनि ने अपनी योग शक्ति से उनको दृश्य दिखाया आकाश में। कहने लगे, हे राजा प्राचीन बहिष्यत, आकाश में देखो। और वहां पे क्या दिखाई पड़ा राजा को कि इतने सारे पशु हैं, घोड़े हैं, गाय हैं, बहुत सारे पशु, और बड़े क्रोध से अपने सिंहों को लेकर राजा की ओर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। बड़ी भयानक, बड़ा भयानक दृश्य था वो। और नारद मुनि ने कहा, देखो ये सारे पशु आपकी मृत्यु के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपने इतने सारे यज्ञ किए हैं, इनका वध किया है आपने, और ये अभी इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी बारी आएगी, हम कब इस राजा को हमारे सिंहों से हम इनकी आक्रमण करेंगे इनके ऊपर। तो देखो कितने पाप किए हैं तुमने कर्म कांड के नाम पे, क्या कितना दूसरों को तुमने कष्ट दिया है, पशुओं को, और ये पशु तुम्हें मारने के लिए भी तैयार हैं, देखो। और फिर वो दृश्य बंद कर दिया नारद मुनि ने और इस प्रकार से उनको भक्ति मार्ग में उपदेश करने लगे। तो इस प्रकार से राजा प्राचीन बहिष्यत जैसे भी कोई दक्ष व्यक्ति जो कर्म कांड ऐसे अच्छी तरह से किया करते थे, ऐसे व्यक्ति ने भी इतने पाप किए, क्योंकि गलती हो जाती है तो पाप, और गलती तो आज न कल थोड़े थोड़ा इधर उधर तो होना ही है। इसलिए ये जो कर्म कांड बलि चढ़ाने की बात है ये आजकल के लिए नहीं है, उस जमाने में भी इतना कठिन था करना, तो आज के जमाने में तो बिल्कुल असंभव है। इसलिए बताया जाता है पुराणों में, अश्वमेध गवालंभम संन्यासम पुल पैतृकम देवरेण सुतोत्पत्तिम कलो पंचम विवर्जयेत। ये पांच प्रकार के चीजें वर्जित हैं कलयुग में, कलो पंचम विवर्जयेत। कौन से हैं वो पांच चीजें? अश्वमेध गवालंभम, अश्वमेध मतलब अश्वमेध यज्ञ, एक अश्व को घोड़े को बलि चढ़ाकर यज्ञ करना कलयुग में मना है। गवालंभम, एक गाय का को बलि चढ़ाकर यज्ञ करना, गाय की भी बलि चढ़ाई जाती थी पुराने जमाने में, लेकिन गाय का मांस कभी नहीं खाया जाता था, तो ये भी कलयुग में करना वर्जित है। तीसरी बात, सन्यास, सन्यास लेना भी कलयुग में वर्जित है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वैष्णव संप्रदाय की बात तो दूर है, मायावादी संप्रदायों में भी सन्यास लिया है। क्यों लेते हैं? केवल प्रचार की दृष्टि से लेते हैं। यही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सिखलाया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया, लेकिन उनके किसी भी अनुयायी ने सन्यास नहीं लिया। छह गोस्वामियों ने नहीं लिया, स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने नहीं लिया, गदाधर पंडित ने नहीं लिया, और बाकी सब तो गृहस्थ थे, जैसे श्रीवास पंडित थे और अन्य सारे थे। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये शुरू किए प्रचार हेतु, क्योंकि प्रचार के लिए लोग जब गैरवे वस्त्र या संन्यास के डंडे को देखते हैं तो सम्मान करते हैं, कुछ सुनते हैं। चैतन्य महाप्रभु खुद जब गृहस्थी में थे तो लोग उनकी बात नहीं सुनते थे, इसलिए वो संन्यास उन्होंने ग्रहण किया। तो इसलिए संन्यास भी एक, क्योंकि कलयुग में संन्यास का पालन करना बहुत कठिन होता है, इसलिए संन्यास भी वर्जित है। पल पैतृकम, पितरों को मांस का अर्पण करना श्राद्ध वगैरह में, यह भी वर्जित है। और देवरेण सुतोत्पत्तिम, देवर के माध्यम से संतान की उत्पत्ति करना, अर्थात किसी व्यक्ति को अपने भाई की पत्नी से विवाह नहीं करना चाहिए। ये कलयुग में पांच चीजें कलो पंचम विवर्जयेत। ये जो अश्वमेध है, गवालंबम है, ये दोनों चीजें कलयुग में वर्जित है। पशु बलि बलि ये करना यज्ञ के लिए नॉट अलाउड कलयुग में। लेकिन जब ब्राह्मण ऐसे करते रहे कलयुग की शुरुआत के बाद में भी, तो क्या हुआ? ब्राह्मण योगी नहीं रहे, मंत्रों का उच्चारण भी सही तरह से नहीं कर पाए, यज्ञ में बहुत सारे दोष आए, इसलिए ये बलि नहीं कहलाती थी लेकिन पशु हत्या होने लगा। और आगे आगे जैसे कलयुग बढ़ता गया, यज्ञ के नाम पर ब्राह्मण लोग पशु हत्या करते थे खाने के लिए, अपने जिह्वा के लिए। और इसके बाद में क्या हुआ, किसको आना पड़ा, किनको आना पड़ा? बुद्ध देव को अवतार लेना पड़ा। और उन्होंने कहा कि ये सब झूठ है, ये सब नहीं करना है, अहिंसा का पालन करना चाहिए। तो लोगों ने कहा, लेकिन ये तो वेदों में बताया गया है, बलि चढ़ा सकते हैं हम यज्ञ करते समय। तो बुद्ध ने क्या कहा, मैं तुम्हारे वेद को मानता नहीं हूं, इसलिए उनका नास्तिक धर्म है भगवान के अवतार, लेकिन नास्तिक धर्म का प्रचार किया। क्यों? ये सारे जो लोग गलत वेदों का उपयोग ले रहे थे उसको बंद करने के लिए, ये जो पशु हत्या हो रही थी गलत ढंग से हो रही थी, वो बंद करने के लिए बुद्ध आए। और उनको बंद करने के लिए उनको ऐसे एक नास्तिकवाद का प्रचार करना पड़ा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पशु हत्या या बलि चढ़ाना ये एक बहुत ही सीरियस बात है, और कलयुग में तो करना ही नहीं चाहिए। और उस जमाने में भी खाने के लिए भी जब ऐसे किया करते थे तो खुद पशु की हत्या करनी पड़ती थी, और उस समय मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता था, और केवल अमुक दिवस पर, विशेष करके अमावस्या के दिवस पर करना पड़ता था। और मंत्र में यह कहा जाता था कि मैं तुम्हारी आज हत्या कर रहा हूं, लेकिन भविष्य में तुम मेरी हत्या करोगे। तो ऐसे हजारों हजारों पशुओं की हत्या करने के बाद में कभी कभी होश ठिकाने आ जाते हैं, आदमी सोचता है अरे मैं ये रोज बोलता हूं, हर महीने में दो बार तीन बार बोलते रहता हूं, इतने साल में बोलते आया हूं, इतने पशुओं की हत्या हमने की, तो कितनी बार मेरी हत्या होनी है ये पशुओं के हाथों में। तब होश ठिकाने आकर फिर पशु हत्या बंद करता है। और ऐसे पशु हत्या भी केवल निम्न श्रेणी के पशुओं के लिए है, जैसे बकरी है इत्यादि, कभी भी गाय के लिए नहीं। गौ हत्या जो करते हैं, गाय के शरीर के ऊपर जितने बाल होते हैं उतने जन्म उनके पुनः उस व्यक्ति को लेना पड़ेगा, और उसे बारंबार ऐसे ही उसे मार डाला जाएगा। जिस प्रकार से वो हत्या कर रहा है उसके ऊपर, गाय के ऊपर, वैसे ही इस व्यक्ति को इतने जन्म लेकर ऐसे ही मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। इसलिए संस्कृत में ये शब्द है मांस है, मांस कहते हैं ना, मांस का है मांसह, मांसह मतलब मैं तुम्हारे पद में आ जाऊंगा। अब मैं तुम्हें मार रहा हूं, अगली बार तुम मेरे पद में आओगे, मैं तुम्हारी जगह में चले जाऊंगा, मांसह। इसलिए जब कोई मांसह खाता है तो उसको याद रहना चाहिए कि मैं अभी वो अगले जन्म में बकरी बन जाऊंगा, अगले जन्म में गाय बन जाऊंगा, मेरी ही हत्या होगी। तो इसलिए इन सब चीजों के बारे में हमें अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए, ताकि जो लोग ये सब कर रहे हैं हम उनको अच्छी तरह से समझाएं। तो इस प्रकार से यहां पर जो हम देखते हैं, दक्ष के यज्ञ स्थल में भी यज्ञ असफल रहा, इसलिए सारे पशु मरे पड़े थे वहां पर, तरुण अवस्था में जीवित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि दक्ष का अहंकार था, यज्ञ से कोई संबंधित वस्तु नहीं थी, ब्राह्मण सही ढंग से सब कुछ कर रहे थे, लेकिन यजमान क्रोधित हो गया, अहंकारी घमंडी व्यक्ति था, और उसके अहंकार की वजह से क्या हो गया, शिवजी क्रोधित हो गए, सारा यज्ञ खत्म हो गया, और सारे जो पशु हैं वो तरुण अवस्था में फिर से उनको जीवित नहीं किया जा सका, तो सब मरे पड़े थे वैसे। तो पशु हत्या मतलब इतना पाप हुआ। इसलिए यज्ञों की जो पत्नियां हैं वो प्रार्थना कर रही हैं विष्णु से कि ये यज्ञ तो हुआ ब्रह्मा जी के आदेशानुसार, और फिर शिव जी क्रोधित हो गए, तो कृपा करके हमें ये पाप से मुक्त कर दीजिए, इनको पुनः जागृत कर दीजिए, जीवित कर दीजिए आप। तो ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं याज्ञिकों की पत्नियां। तो हमें ये सब पढ़ना चाहिए क्यों, ताकि हम जान सकें कि वैदिक संस्कृति में क्या सब हुआ करता था, कैसे ये पशु बलि चढ़ाना मतलब क्या है, और आजकल जो बलि चढ़ता है उसका क्या स्थान है। उसका तो हमें बहुत ही सख्त ढंग से खंडन करना चाहिए, आजकल जो बलि चढ़ाते हैं लोग। इस प्रकार से जानकारी से हम हमारे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनजाने में भौतिक संसार में पाप तो होते ही रहते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि महाशुच। मेरे शरण में आओ तो मैं सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। जो व्यक्ति मेरे शरण में है, गलती से अगर कोई छोटा मोटा पाप भी कर देता है तो मैं उसे पाप के फल से मुक्त कर देता हूं। लेकिन इसका फायदा उठाकर हमें पाप नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि हम कृष्ण के शरण में नहीं गए हैं। कृष्ण के शरण में जाना मतलब कृष्ण की आज्ञा का पालन करना। तो ऐसे कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो कि कृष्ण की आज्ञा के खिलाफ है। तो कृष्ण की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और उसके बावजूद अनजाने में कोई पाप हो जाता है तो फिर भगवान उस पाप से हमें, उस पाप के फल से बचाते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? खतरा कम रहता है क्योंकि कम से कम पाप तो नहीं होता है, जैसे बलि तो नहीं चढ़ाते हैं। बलि चढ़ाकर दोष हो जाता है तो फिर वो पाप, वो हत्या जो है उसका बोझ, पाप का बोझ यजमान के ऊपर होता है, ब्राह्मणों के ऊपर होता है। लेकिन इसमें ज्यादा खतरा नहीं है और थोड़ा बहुत फायदा मिल जाता है। अगर सही किया जाए तो थोड़ा कुछ फायदा मिल जाता है, क्योंकि आजकल के जो यज्ञ होते हैं वो छोटे मोटे यज्ञ हैं। लेकिन पहले के जमाने में जो यज्ञों का वर्णन है, देखिए ये यज्ञ कितना विशाल था। दशरथ महाराज का यज्ञ जो था वो इतना विशाल था कि शहर से बड़ा था। और दशरथ महाराज का यज्ञ इस यज्ञ, दक्ष के यज्ञ के तुलना से बहुत छोटा यज्ञ था। ये तो इतना बड़ा यज्ञ था कि ब्रह्मांड से सारे लोग आने लगे इस यज्ञ के लिए। तो सोचिए, तो आजकल में जो कर्मकांड होता है, जो भी होता है, वो थोड़ा बहुत छोटा मोटा होता है। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान के भक्ति में नहीं है तो कम से कम उसे वो तो करना चाहिए। एक प्रकार की पुण्यत भावना तो रहती है, कुछ न कुछ तो आज्ञा का पालन करता है, कुछ तो धार्मिकता रहती है, इतना भी कम क्यों न हो। कम से कम थोड़ा बहुत तो शास्त्रों का पालन करता है, विधि विधानों का पालन करता है। ऐसे धीरे 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 से उसकी प्रगति हो सकती है और एक दिन बहुत जन्मों के बाद में हो सकता है वो भक्ति में आ जाए, या अगर सुकृति हो तो इसी जन्म में भी आ सकता है। और कोई प्रश्न? जो भी यज्ञ विष्णु अर्थात यज्ञ की प्रसन्नता के लिए किए जाने चाहिए, तब जाकर वो हम कर्म बंधन से मुक्त करा सकते हैं। अन्यथा ऐसे जो भी हम कार्य करते हैं, यज्ञ क्यों न हो, वो कर्म बंधन का कारण बन जाते हैं। यज्ञ करते हैं तो हमारे हरे कृष्ण के वैष्णव ही काफी हैं, क्योंकि वैष्णव जो होता है ब्राह्मण के परे है। जो नियमों का पालन कर रहे हैं, अच्छी तरह से विधि विधानों का पालन करते हैं, वो वैष्णव हमारे वैष्णव यज्ञ कर सकते हैं अवश्य। हमें कर्मकांड बंद करना चाहिए, केवल अभी ये देखना है कि अलग अलग जो संस्कार हैं उनको भक्ति से कैसे जोड़ना है। हाँ, दुष्ट व्यक्ति थे, बिल्कुल क्रूर और दुष्ट थे वो भी। सब जगह कहते थे, वास्तव में हुआ ये कि जब महाराज अंग अचानक चले गए, किसी को बताया नहीं, जैसे धृतराष्ट्र चले गए थे बीच रात में अपने महल से, उसी प्रकार से महाराज अंग किसी को बताए बिना चुपके से निकल गए अपने महल से। तो जब लोगों ने देखा अगले दिन कि महाराज ही नहीं है तो क्या किया जाए। तो ब्राह्मण बड़े दुविधा में थे, मंत्री भी दुविधा में थे, क्या किया जाए। वेण जैसे राजा को, वेण जैसे व्यक्ति को राजा बना